लेख का नाम रात वाली वह बस। आशंका और आत्मविश्वास के बीच झूलती एक लड़की का सफर। इसकी लेखिका है सुमन परमार।
आगरा से चलकर निजामुद्दीन स्टेशन आने वाली ताज एक्सप्रेस उस दिन फिर लेट हो गई थी। अब प्रगति मैदान से कनॉट प्लेस और वहां से विश्वविद्यालय की मेट्रो फिर नहीं मिलेगी। रात के 11:30 बज रहे हैं। इतनी रात में तो कोई ऑटो वाला भी विश्वविद्यालय की तरफ जाने को तैयार नहीं होगा। 5 ऑटो वालों के मना करने के बाद आखिर में ये छठा वाला जाने को तैयार हुआ है, वो भी 2 गुना किराए पर।
आपको रास्ता पता है?
हाँ पता है, आप चलिए। उफ, इस ऑटो वाले के लहजे से समझ आ रहा है कि इसने शराब पी रखी है। देर रात सरायकाले खां से ITO वाली सड़क पर ट्रक ही ट्रक चलते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जीन्स की जेब से फ़ोन निकालकर मन ही मन मैंने सोचा कि देखते हैं आगे क्या होता है। अरे यार, मेरा फ़ोन फिर बंद हो गया। किसी भी इमरजेंसी में मेरा फ़ोन सबसे पहले मेरा साथ छोड़ जाता है। एक दोस्त ने कभी कहा था,
तुम्हारा फ़ोन चार्ज क्यों नहीं रहता? तुम्हें पता है ना कि लड़कियों को इजाज़त नहीं कि राह चलते उनका फ़ोन बंद हो जाए। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? डर नहीं लगता क्या तुम्हें?
डर पता नहीं, मुझे सड़कों पर घूमना पसंद है, अकेले, आवारा, बेफिक्र, बिंदास। मुझे अकेले घूमने में कभी डर नहीं लगा। डर लगता है घर की चार दीवारी में। अच्छे घर की लड़कियां बिना काम बेवजह घर से बाहर नहीं निकलती हैं। मैं भी यही मानकर बैठ जाती तो शायद मैं कभी नहीं जान पाती कि अकेले, बेकाम, बेटेम, अपनी मर्जी से घूमना क्या होता है। नहीं जान पाती कि खुद की इच्छा से कमरा किराए पर लेने से प्यार में डूबने तक का एहसास कैसा होता है। बचपन में मेरे लिए आज़ादी का मतलब था कमरे की लाइट देर तक जलाए रखना, रात को 12 बजे कॉफ़ी बनाकर पीना और अपनी मर्जी से कहीं भी आना जाना। छोटे शहर की छोटी छोटी आकांक्षाएं। वैसे ये आज छोटी लगती हैं, उस वक्त ये ऐसा सपना था जिसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, कुछ भी। 12वीं करने के बाद लड़ झगड़ कर एक छोटे कस्बे से बाहर निकली और दिल्ली जैसे महानगर पहुंची तो नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। इतना पता था कि मुझे दिल्ली की चौड़ी सड़कें, कॉलेज में जोर जोर से हंसती लड़कियां अच्छी लगती थीं। दिल्ली शहर ने मुझे भागना, दौड़ना, उड़ना सिखाया। यही उड़ान मुझे दिल्ली से बाहर एक नई जगह लेकर गई जहां मुझे पहली नौकरी मिली थी। कितनी दूर है, कौन कौन सी ट्रेन वहां जाती है, बसें कहां से मिलेंगी, इस सब का पता लगाते हुए मैं 92.7 बिग FM रेडियो में काम करने के लिए आगरा पहुंच गई। तो उस वक्त अक्टूबर का महीना चल रहा था। काम शुरू किए अभी कुछ महीने ही हुए थे कि ट्रेनिंग के सिलसिले में हेड ऑफिस कानपुर जाना पड़ा। कुछ 5 राज्यों से 25 लोग ट्रेनिंग के लिए आए थे। मेरे लिए आगरा के बाद उत्तर प्रदेश का यह दूसरा शहर था जहां मैं जा रही थी। तय हुआ कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कानपुर घूमा जाए और ठग्गू के लड्डू खाए जाए। अब तक कानपुर के बारे में बस अखबारों में सुना था। कानपुर में 15 घंटे बिजली गायब, अवैध हथियारों के साथ कुख्यात गिरफ्तार, बैल ने दूल्हे को मारी लात। ट्रेनिंग के दौरान पूरा दिन दफ्तर में ही बीत जाता था, फिर होटल लौटकर रात का खाना खाते और अगले दिन की घिसाई के बारे में सोचते सोचते सो जाते थे।
इसी बीच आगरा में मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया। मुझे किसी भी हालत में शुक्रवार की शाम आगरा के लिए निकलना ही था। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं दिखी। 5 घंटे का रास्ता है, आसानी से आगरा पहुंच जाऊंगी। टीम लीडर ने कहा,
तुम्हें क्या लगता है सारी जगह तुम्हारी दिल्ली की तरह है कि जब मन आया बाहर निकले, ऑटो लिया और चल दिए? यहाँ लड़कियां अकेले ट्रैवल नहीं करती।
पहली बात, दिल्ली में भी आप ऐसे ही कहीं नहीं निकल जाते। कहाँ जाना है, वापस कैसे लौटूंगी, ये सब सोचकर ही जाना संभव होता है। दूसरी बात, मैं अकेले यात्रा कर सकती हूँ, मैंने जवाब दिया। टीम लीडर से बहस के चक्कर में उस दिन का लंच मिस हो गया। खैर, शाम के 7:30 बजे हैं, मैं ऑटो से कानपुर बस अड्डे पहुंचती हूँ। कंधे पर एक लैपटॉप बैग लटक रहा है।
इलाहाबाद, मुरैना, शाहजहाँबाद, दिल्ली जयपुर, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, मुरैना, शाहजहाँबाद, दिल्ली जयपुर, लखनऊ, आगरा।
ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाई हूँ कि कोई इधर से कहता, साइड हटना, कोई उधर से बोलता,
टिकट।
चारों तरफ से बहुत सारी आवाजें आ रही थी। मेरी नजरें इंक्वायरी बोर्ड को ढूंढ रही थी जिस पर लाल या पीले अक्षरों में बसों के बारे में जानकारी प्रसारित होती रहती है। इस बीच लोग इधर से उधर टक्कर मारकर आगे बढ़ जा रहे थे। कुछ लोग घूरते हुए सामने आए।
कहाँ जाना है मैडम जी?
कहीं नहीं, कहीं नहीं, मैं देख लूंगी, मैंने जवाब दिया। तभी अचानक एक पर एक गिरते पड़ते शहरों के नाम में मुझे आगरा शब्द सुनाई दिया। मैं फिल्म बाजीगर के काजोल की तरह खुशी के मारे खिल उठी। एक तसल्ली भरी मुस्कान के साथ मैंने देखा, उत्तर प्रदेश परिवहन एयर कंडीशन बस। हल्के हरे रंग की उस बस को मैं पहचानती थी। आगरा दिल्ली के बीच भी इसी तरह की बसें चला करती हैं। ऐसा नहीं था कि बस में सफ़र करना मेरे लिए कोई नई बात थी। आगरा दिल्ली जयपुर के बीच पिछले कई महीनों से ताज एक्सप्रेस से लेकर शताब्दी ट्रेन और वॉल्वो से लेकर एसी एक्सप्रेस बसों के ज़्यादातर कंडक्टर और टिकट कलेक्टर मुझे पहचानने लगे थे। मेरे जैसे नींद के मारे लोगों के लिए सफ़र में सोना सबसे आनंददायक काम होता था। एक लड़की होने के नाते सड़क पर बाहर निकलते ही मेरे मन में प्लान ए प्लान बी घूमने लगता है। खासकर सफ़र के दौरान मैं आसपास के लोगों और माहौल का बहुत बारीकी से जायज़ा लेती हूँ। मेरे एंटीना चारों तरफ जागरूक रहते हैं। कौन मेरे बगल में आकर बैठ रहा है, कौन किधर से देख रहा है, ये सब कुछ जैसे मेरा टूल किट होता है घर से बाहर निकलने को लेकर। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा करने के लिए तैयार करते हैं ताकि मैं खतरे को भांप सकूं। जैसे मेरा शरीर एक प्लेन है और मैं पायलट की भूमिका में सेफ लैंडिंग के लिए चौकन्नी रहती हूँ। अकेले सफ़र करने के अपने अफसानों में बेफिक्र सिर्फ मंजिल पर पहुँच कर ही हो पाती हूँ, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन ये मंजर भी बदलेगा। दफ्तर से बस स्टैंड पहुँचते हुए मैं इन्हीं ख्यालों में गुम थी। क्या ये बस आगरा जाएगी?
नहीं।
क्या, क्यों, अभी तो आगरा आगरा चिल्ला रहे थे।
हाँ, लेकिन 10 पैसेंजर भी नहीं है इसीलिए बस नहीं चलेगी।
एसी बस ने आगरा जाने से इनकार कर दिया। अब क्या, अब बस स्टैंड तक आकर यहाँ से लौटना ठीक नहीं लग रहा था, आगरा जाना भी ज़रूरी था। कुछ पल खड़े होकर अपने आसपास की भीड़ को देखने लगी। क्या अलग है, वैसा ही तो है जैसा हर एक बस स्टैंड होता है। हाँ, थोड़ी भीड़ वाली जगह है, लड़कियां कम दिख रही हैं। अभी एक के बाद एक बसों पर नजर घुमा रही थी कि पीछे से एक सफेद नीली बस ने जोर से हॉर्न बजाया।
इटावा मुरैना, इटावा मुरैना, इटावा मुरैना और रैया आगरा, आगरा आगरा, इटावा मुरैना और रैया आगरा।
कंडक्टर ने जितने भी नाम लिए उनमें से बस एक नाम सुनकर मेरे भीतर की उम्मीद जाग गई, आगरा। क्या ये बस आगरा जाएगी?
हाँ।
मैं बस में बैठ गई। समय रात के 8:15 बजे। अगले 20 से 25 मिनट बस में कई कई तरह के लोग अंदर बाहर कर रहे थे। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठी थी। लगभग 30-32 साल का एक नौजवान मेरी बगल की सीट पर आकर बैठ गया। 25 मिनट के बाद बस चली। बस के चलने के कुछ ही मिनट बाद कंडक्टर सभी के पास टिकट काटने आया। एक टिकट आगरा?
ये बस आगरा नहीं जाएगी।
लेकिन अभी तो आपने कहा था कि आगरा जाएगी, मैं आपसे पूछकर बैठी थी।
हाँ, लेकिन आगरा का कोई पैसेंजर नहीं है इसीलिए नहीं जाएगी।
मैं तो हूँ, आपने मुझे बिठाया क्यों?
इटावा छोड़ दूंगा, वहां से आगरा के लिए बस ले लेना।
उफ, अब क्या। बस शहर छोड़कर हाईवे की तरफ मुड़ रही थी। मैंने जताया नहीं लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि मैं कहीं फंस तो नहीं गई। यात्राओं के अनुभव से जानती हूँ कि अपने संशय को किसी के सामने नहीं दिखाना चाहिए। ऐसी स्थितियों में विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मैं चुपचाप बैठी रही। बस की लगभग सभी सीटें भरी थीं। मेरी निगाह किसी लड़की या औरत को ढूंढ रही थी। मुश्किल से 2 औरतें दिखीं जो अपने परिवार के साथ आगे की सीटों पर बैठी थीं। आधे घंटे के सफ़र के बाद बस एक ढाबे के पास रुकी। देखते ही देखते बस से सारे पैसेंजर नीचे उतर गए। सिर्फ मेरे बगल की सीट पर बैठा आदमी यूं ही बैठा रहा। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही थी लेकिन खुद को एक बार जब्त कर लिया कि नहीं नहीं यहाँ नहीं उतरना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार, आगरा पहुँचकर खा लूँगी। उस व्यक्ति ने मुझे मूंगफली ऑफर की। मैंने हंसते हुए मना कर दिया। मेरा दिमाग उस समय चाचा चौधरी के दिमाग से भी तेज़ दौड़ रहा था। समय 9:30 बजे। मेरे आसपास के पूरे माहौल ने मुझे और चौकन्ना कर दिया। कुछ था जो मेरे भीतर सवाल कर रहा था, कि क्या जरूरत थी इस तरह देर रात बिना रिजर्व टिकट के चल देने की। क्या रात में सफर करना जरूरी है? यही सवाल तो हर लड़की से पूछा जाता है कि क्या जरूरत है बाहर निकलने की। लड़कियां बेवजह बेमतलब बाहर नहीं जाती। बाहर खतरा है, खतरा दिन में है, खतरा रात में है। मैं अकेली सफर क्यों करती हूं? क्योंकि ऐसा करके मुझे खुद पर अधिकार महसूस होता है, अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने का अधिकार। मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता कि मैं यहां जाऊं या ना जाऊं। सड़क पर बहुत अंधेरा था। आमतौर पर सफर के दौरान मैं आसपास की दुकानों या लोगों को पहचानने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी कुछ भी दिख नहीं रहा था। मुझे तो मेरी बस के पैसेंजर्स की शक्लें भी याद नहीं। वो लड़का मुझसे कई तरह के सवाल करता रहा, कहाँ जाना है, कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। मेरे रूखे स्वभाव को भांप लेने के बाद वो अपने आप में ही बड़बड़ाता रहा। मैं मन ही मन सोच रही थी कि उसे टोकूं या ना टोकूं। खैर जाने देते हैं, बिना मतलब के किसी से क्या उलझना, ये भी सफर का ही पार्ट है। आधे घंटे बाद बस में सवारियां बैठने लगीं। इंजन की गड़गड़ाहट से अंदाज़ा लग गया था कि बस अब चलने वाली है। लेकिन ये क्या, बस में तो सिर्फ 7-8 लोग ही बैठे हैं, बाकी सब कहाँ गए? वो ढाबे पर ही उतर गए। जो बचे हुए थे वो भी अगले 20 मिनट में एक एक कर उतरते चले गए। बगल की सीट वाले लड़के ने भी उतरने से पहले मुझसे कहा कि आप अकेली इतनी रात में कैसे सफ़र करेंगी, मेरे घर चलिए, कल चली जाइएगा। मैंने शुक्रिया कहकर उसकी बात अनसुनी कर दी। अब बस में मैं, कंडक्टर और ड्राइवर हैं। समय 10:30 PM। बस आगे जाएगी ना? अब तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं किस रास्ते पर चल रही हूँ, ये कौन सा इलाका है। क्या ये लोग सच में ड्राइवर कंडक्टर ही हैं?
हाँ हाँ, जाएगी, आप परेशान ना हो। ये रूट ठीक नहीं है, इसीलिए बस की सारी लाइटें बंद कर रहा हूँ। आप अपना सिर नीचे रखिएगा, या चाहे तो सीट पर लेट जाए।
कंडक्टर ने अपनी बात 2 वाक्यों में कह दी और पूरे बस में अंधेरा छा गया।
हाँ, फोन भी मत चलाइएगा, फोन की रोशनी से परेशानी हो सकती है।
कैसी परेशानी? आखिर में ये बस जा कहाँ रही है? अब मुझे यकीन होने लगा था कि मुझे प्लान बी की जरूरत पड़ेगी। प्लान बी क्या है? परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार। कोई 1.5 घंटे से बिना पलके झुकाए मैं किसी अंधेरे में चली जा रही हूँ। होना तो यही चाहिए था कि मुझे बहुत डर लगता, जाने क्यों मुझे डर नहीं लग रहा था। इतना जरूर सोच लिया था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाऊंगी, उससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता था। मैं सामने पसरे अंधेरे को पढ़ने की कोशिश करती रही। अगले ही पल मुझे सीट के पीछे एक परछाई दिखी। मैं घबराकर तेजी से आगे वाली सीट पर बैठ गई। मुड़कर देखा तो एक व्यक्ति पीछे की सीट पर अचानक से उठ बैठा था। ये कहां से आया? मुझे घबराता हुआ देखकर कंडक्टर ने ड्राइवर के केबिन से बाहर निकलकर पूछताछ की और मुझे बताया कि ये व्यक्ति होश में नहीं है, नशे की हालत में सीट पर ही सो गया था, अब अचानक उठ गया है। रात के 1:15 पर हम इटावा पहुंचे। कंडक्टर मुझे बस से उतरने का निर्देश देते हुए खुद टिकट काउंटर की तरफ बढ़ गया। कभी 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा ये शहर, रात के इस पहर में 80 के दशक की किसी फिल्म के सीन की तरह लग रहा था। एक पोल की रोशनी में कुछ लोग जमीन पर सोए थे, कुछ इधर उधर चल रहे थे। एक चाय वाले के पास 2 लड़के खड़े चाय पी रहे थे। बस से उतरने के बाद लाजमी था कि लोगों की निगाहें मेरे ऊपर पड़ती। इधर उधर भटकने के बाद एक बोर्ड पर लेडीज टॉयलेट पढ़कर मैं उस ओर बढ़ गई, लेकिन दरवाज़ा बंद था। बंद तो होना ही था, आश्चर्य तब होता जब ये दरवाज़ा खुला होता, क्योंकि 99% महिला शौचालय अक्सर बंद ही मिलते हैं। यह सच में शोध का विषय है कि ऐसा क्यों होता है। मैं वापस बस के पास आकर खड़ी हुई थी कि कंडक्टर ने बताया 10 मिनट में आगरा जाने वाली बस आ रही है। अब तक कंडक्टर पर मेरा भरोसा पुख्ता हो चला था। ऐसा पहली बार था कि कंडक्टर ड्राइवर में से किसी ने ना मुझे कोई ज्ञान देने की कोशिश की और ना ही मुझसे कोई सवाल किया था। खैर, आगरा की बस आई, कुछ पैसेंजर उतरे, 1-2 चढ़े, मैं भी उसमें बैठ गई। लेकिन इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं। बस में बैठते ही मैंने एक बार फिर निगाह दौड़ाई कि कितनी लड़कियां हैं। 3। यात्रा में खुद के अलावा किसी लड़की या औरत का होना विश्वास दिलाता है कि चलो कोई है, नहीं तो एक तरफा मर्दों से भरी बसों में आपकी लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती है। मुझे ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट मिली, सबसे आगे। बस बहुत ही खंडहर हालत में थी। कंडक्टर लगातार मेरी तरफ घूरे जा रहा था। बस के चलने के 10-15 मिनट बाद ही उसने मुझसे कहा कि मैं पीछे उसके बगल की सीट पर आकर बैठ जाऊं। जी तो उसे थप्पड़ मारने का हो रहा था, लेकिन इतना कहकर चुप हो गई कि मैं अपनी सीट पर ही ठीक हूं। मैं बहुत थक चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना कंबल देने की कोशिश की।
अरे मैडम, ठंड लग जाएगी, ये लो कंबल ले लो।
मैं जोर से चिल्लाई, नहीं थैंक यू, सन्नाटा। कुछ लोगों ने सीट से उचक कर देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, बाकी सभी सोते ही रहे। कंडक्टर पर चिल्लाने के बाद कब मेरी आंखें लग गई मुझे पता ही नहीं चला। तभी आवाज आई, धड़ाम। ये क्या हुआ? बस की टक्कर हो गई है। टक्कर बहुत तेज नहीं था, लेकिन बस की खस्ता हालत की वजह से वो पूरी तरह हिल गई थी। मेरी नींद तब खुली जब टक्कर से लगे झटके में मेरा सिर ड्राइवर की सीट के पीछे लगे रॉड पर जा टकराया। मेरे होंठों से खून बह रहा था और सिर और हाथ छिल गए थे। खून रुक नहीं रहा था तो कंडक्टर ने कहीं से चीनी का इंतजाम कर मुझे लाकर दिया और कहा,
इसे होंठ पर रख लीजिए, खून रुक जाएगा।
बस अब वापस से हाईवे पर चलने लगी। खून भी रुक गया है। लगभग सारे पैसेंजर जाग चुके हैं। आपस में बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला सुनाई दे रहा है। मैं सुनने की कोशिश भी नहीं कर रही। शाम से होने वाली सारी घटनाओं को देखने के बाद मुझे हंसने की इच्छा हो रही है, लेकिन हंसते ही होंठ दुखने लगते हैं। सुबह के 3:30 बज रहे हैं। मैं आगरा के बस स्टॉप पहुंच गई हूँ। ये मेरा जाना पहचाना स्टॉप है। मैं ऑटो लेकर अपने कमरे पर पहुँचती हूँ और बिस्तर पर गिरते ही मेरे मुंह से निकला, उफ। अगले दिन जब आगरा के दोस्तों को सारा वाक्या बताया तो उनके अनुसार मेरा जिंदा बचकर निकल जाना चमत्कार ही था, क्योंकि बस जिस रूट से इटावा जा रही थी वो गुंडों और डाकुओं को इलाका माना जाता है। वहाँ कुछ भी हो सकता है।
भरोसा नाम की चिड़िया जो मेरे कंधे पर बैठी थी उसने मुझे कहीं भी डरने नहीं दिया। अब समझ आ रहा है कि बस में कंडक्टर ड्राइवर की उस जोड़ी ने मेरे विश्वास को बचाए रखने के लिए मुझे जोखिम के बीच से निकालकर मेरी मंजिल तक पहुंचने में मदद की। खतरा हर जगह है, लेकिन किसी के कहने पर उससे डरकर घर में बैठे रहना न केवल खुद के जीवन के साथ धोखा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के साथ भी धोखा है। क्योंकि अगर आज हम बाहर निकलेंगे तो कल हमारी बेटियां निकलेंगी, परसों और लड़कियां निकलेंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि जब मेरी जैसी कोई बावरी लड़की अपना सिर ऊंचा कर बस में देखेगी तो हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां दिखाई देंगी। आगे भी इस तरह के किस्से मेरे साथ अक्सर होते रहे, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमा हमारा।